ॐ शांति ॐ शांति। आज रविवार है, हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली पुराने वर्ष का लास्ट डे है, नए वर्ष का शुरुआत है। तो बाबा ने बच्चों को कहा कि बाप आए हैं बच्चों को नवयुग के लिए, नए वर्ष के लिए तथा नए जीवन के लिए मुबारक देते हैं, बधाई देते हैं और बधाई देते हैं। बाबा ने कहा आज का दिन जो है बधाई का भी है और विदाई का भी, पुराने संस्कारों की विदाई और नए जीवन की बधाई। फिर बाबा ने कहा कि बाप जो है बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं, तो बच्चे भी अपने भाग्य को देखते हैं या नहीं देखते? बाबा बच्चों के भाग्य का गुणगान करते हैं, बाबा कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह मेरे बच्चे, लेकिन बच्चे को क्या कहना है और बच्चे क्या कहते हैं? वाह हमारा भाग्य, वाह हमारा भाग्य, वाह हमारा बाबा, वाह हमारा बाबा, ऐसा करते या नहीं करते? फिर बाबा ने कहा देखो बाबा किस लिए आए हैं, बाबा आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, लेकिन बच्चों को आदत पड़ी हुई है बोझ उठाने की। बाबा कहते बोझ क्यों उठाते, जबकि लेने वाला बैठा है तो आप उसको दे दो ना, लेकिन वो देते नहीं है, बोझ लेकर के और भारी होकर के चलते हैं। और नए वर्ष में क्या करना है वो भी बाबा ने काम दिया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 29 जून 2025 और रिवाइज्ड मुरली की डेट है 31 दिसंबर 2005। रिवाइज्ड मुरली की डेट 31 दिसंबर 2005 और आज की डेट है 29 जून 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान तपस्या और सेवा में नंबर वन बनो। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर वन बनो। आज बाप दादा चारों ओर के चाहे सन्मुख हैं चाहे दूर बैठे हैं दिल के समीप। बाबा की जब मुरली चलती तो कुछ तो सामने हैं, कुछ पांडव भवन में ऊपर हैं, कुछ अन्य स्थानों पर हैं, देश विदेश में बैठे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आज बाप दादा चारों ओर के चाहे सन्मुख हैं चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को तीन मुबारक दे रहे। एक नव जीवन की मुबारक है, नोट करो, एक नव जीवन की मुबारक है, दूसरी नव युग की मुबारक है और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक। नया जीवन नया युग और नया जीवन वर्ष आ रहा है, तो आज के दिन नए वर्ष की मुबारक है। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो ना? वास्तव में सच्ची दिल की खुशी भी है विदाई और बधाई का संगम युग है। साल का अंत नया साल की शुरुआत है, तो बाबा कहते हैं विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे दिन का, बाबा कहते हैं आज के दिन का महत्व भी है, विदाई भी है बधाई भी है, विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते। जब नया वर्ष आने लगता है रात को 12 बजता है और उससे पहले ही धूमधाम से करते 12 बजा तो चारों तरफ कहाँ देखो पूरी रात ही वो नाचते हैं गाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने वर्ष के संगम की महिमा, बाबा बता रहे हैं संगम युग की महिमा बाप के कारण है, लेकिन जो पुराने वर्ष का संगम है वो किसके कारण से है, इस संगम युग के कारण से। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ दो नदियां मिलती हैं संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है उसकी भी महिमा है, लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की और इस पुरुषोत्तम युग की है। जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो, ये नशा है ना, कौन सा नशा कि हम संगम पर बैठे हैं जहाँ आत्मा और बाबा का मिलन है, तो बाबा कहते ये नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस समय पर हो, क्या बोलेंगे, संगम पर। क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे हम इस पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, न कलयुगी हो न सतयुगी हो, कौन हो, बाबा कहते आप संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है, क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है। इस संगम युग की महिमा क्यों है, क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता है। तो मेला मनाने आए हो ना आप, मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो। जब नए वर्ष का होता है ना, तो एक तो जिनको टर्न दिया वो भी आते हैं, देश विदेश के भी आते हैं, और साथ साथ कईयों को होता है कि नया वर्ष हमको बस बाबा के पास मनाना है, कितना भी उनको मना करो लेकिन आते ही रहते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, एक मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता है। तो मेला मनाने आए हो ना आप, मिलन मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भाग्य भी मुंदा हुआ है, आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है, पहले भी था अभी भी है और भी रहेगा। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वहा भाग्यवान बच्चे, वहा बाबा बच्चों की क्या महिमा करते हैं, वहा भाग्यवान बच्चे, वहा बाप ही हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वहा भाग्यवान बच्चे, वहा अपने भाग्य को देखें, दिल में अपने प्रति क्या कहना है बोलो, क्या बोलेंगे बोलो बोलो भाई बोलो, वाह बाबा, नहीं पहले को वाह मेरा भाग्य बोलो, सब बोलो, और वाह मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं अपने भाग्य को देख, दिल में अपने प्रति मैं वहां, वहां मेरा भाग्य, वहां वहां मेरा बाबे बाबा, वहां क्या बोला, वहां मैं मेरा भाग्य, वहां मेरा बाबा, वहां वहां बाबा ने कितनी बार बोला वहां, मेरा ब्राह्मण परिवार वहां, पहले मैं वहां, मेरा भाग्य वहां, मेरा बाबा वहां और मेरा ब्राह्मण परिवार वहां। ये वहां वहां के गीत ऑटोमेटिकली दिल में गाते रहते हो ना बाबा, कहते दिल में और बातों को छोड़ एक वहां वहां के गीत गाते रहो। ये वहां वहां के गीत ऑटोमेटिकली दिन में गाते रहते हो ना, तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया कि किन किन बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है क्योंकि लास्ट आ रहा है, जाने का टाइम हो रहा है। तो बाबा कहते हैं आज तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया कि किन किन बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। ऐसी बधाई हो जो आपके चेहरे को देखते ही जो आत्मा सामने आए वह भी बधाइयां मना सके। कभी कभी किसको बधाई देते और आस पर जोड़ते वो भी उसी स्वरूप में आ जाते। तो बाबा कहते हैं ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख के भी जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयां प्राप्त कर सके। एक है देना और दूसरा वह भी प्राप्त कर सके। तो बाबा कहते हैं और बधाई प्राप्त करके खुश हो जाए, जो दिल से बधाई देते वह लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते। बधाई देने वाले लेने वाले बाबा कहते वो कैसे दिखाई देंगे, तो बाबा ने कहा वो संगम योगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प का व जो भी कुछ प्रवृत्ति का है कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। अब आप पूछ रहे हैं संकल्पों का बोझ, कर्मों का बोझ, कई प्रकार के बोझ होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प या जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना, बोझ दे दिया है या थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देता। कई कहते ना फरिश्ता कैसे बने कैसे बने, तो बाबा कहते थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देता। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? बाबा कहते मुझे दे दो। कई बार होता है ना कोई कहता इतना बोझ उठा रहे हमको दे दो, तो बाबा कहते देना कोई मुश्किल है क्या? जबकि बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? आप बताओ बाबा को बोझ देना मुश्किल है या सहज है? मुश्किल तब होता है जब किसी बात में अटैचमेंट होती है। तो बाबा कहते बोझ देना सहज है या मुश्किल है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाओ। दे दिया या अभी तक है अपने पास है? जो समझते हैं बोझ दे दिया वह हाथ उठाओ। दे दिया है ना बाबा, दोबारा पक्का कर रहे हैं, दे दिया है ना। देखना सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है। अच्छा दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। चलो आपको बाबा की तरफ से बहुत मुबारक है, ताली बजाओ ना अपने लिए। तो बाबा कहते दे दिया तो मुबारक हो, और जिन्होंने नहीं दिया वह किस लिए रखा है? बाबा पूछते बोझ नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है क्या? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिकर बादशाह। आज का टाइटल मेरे बेफिकर बादशाह। बाबा कहते हैं ओ मेरे बेफिकर बादशाह, और बच्चे क्या कहेंगे, बाबा हम बेफिकर क्या हैं? है ना, थोड़ा सा भी सोच है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते ओ मेरे बेफिकर बादशाह, तो बोझ का फिकर होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं कि बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, बाबा कहते क्यों रखते हो, दे दो, लेकिन देने में भी क्या होता है, बहुत संकोच रहता है ना। तो बाबा इसलिए सभी बच्चों को बहुत प्यार से कह रहे हैं बच्चे बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है, क्यों रखते हो? क्या बोझ अच्छा लगता है? किसी को अच्छा थोड़ी लगेगा, इतना प्रॉब्लम होती है ना सबसे। तो बाबा बता रहे हैं क्या बोझ अच्छा लगता है, सबसे सूक्ष्म बोझ है कौन सा, पुराने संस्कार का। पहला सूक्ष्म बोझ पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट भी चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संस्कार की आकर्षण कम हुई। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं, कई बच्चों का पुराने संस्कार संसार की आकर्षण कम हुई है, पूरी नहीं कम हुई है, थोड़ी हुई है समझो, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी का रहा हुआ है। किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा, अशुद्ध संकल्प नहीं है, व्यर्थ संकल्प आते ना, तो बाबा कहते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है। बाबा ने का परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है। व्यर्थ संकल्प होते ना तो मुख से निकल आता है, ये क्यों, ऐसा क्यों? तो बाबा कहते हैं, फिर से बता रही हूँ, किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा भी देता, वैसे नहीं देगा, समय पर धोखा भी देता है, और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाता है। इसलिए आज का संस्कार का संस्कार करो, इसलिए आज ये पुराने व्यर्थ संस्कारों का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना भी चाहता है, तंग भी है, लेकिन सदाकाल के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थ में। कई बार कहते हैं मेरा संस्कार है मेरे पुरुषार्थ में बाधा डालता है, तो बाबा कहते हैं सदाकाल के लिए उसको छोड़ना है तो उसमें तीव्र पुरुषार्थी नहीं। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण क्या है, तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता है? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं जलाया भी, ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी में बीच बीच में उठ जाता है। दुनिया में भी ऐसे होते हैं ना, तो चीज को मारते हैं तो जरा बेहोश हुआ तो सोचेंगे मर गया, लेकिन जैसे आप किनारा करेंगे वो बेहोश वाला उठ करके बैठ जाता है। तो बाबा कहते मारा जरूर है, बेहोश करके सोचते चला गया, लेकिन वो बेहोश नहीं, वो अंदर से जिंदा है, फिर वो खड़ा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे रावण को मारा भी लेकिन मारा नहीं जलाया भी, ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। थोड़ा बेहोश हो जाता है संस्कार लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि में जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। क्या करना है, इसलिए पुराने संस्कार का पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हैं ना इस वर्ष में क्या करना, जब नया वर्ष आना होता था तो बाबा से पहले पूछते थे बाबा नए वर्ष के लिए क्या प्रेरणा, इस नए वर्ष में क्या करना है? तो बाबा कहते नए वर्ष में क्या करना है उसके लिए बाबा ने बताया, इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हैं ना इस नए वर्ष में नया क्या करना है, सेवा की तो बात ही अलग है लेकिन पहले स्वयं की बात। सेवा तो करते रहते हैं, करते ही रहेंगे, बहुत प्यार से करते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं पहले स्वयं का अटेंशन रखो। लेकिन पहले स्वयं की बात है, योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए भी देखते हैं, अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते। योग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बाबा कहते हैं योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं, रूह रूहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं, प्यार से याद करते हैं, बाबा से मीठी मीठी बातें भी करते हैं, बाबा को कहते बाबा हमारा ये काम कर दो, हमारे को शक्ति दे दो, वो भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते। प्यार से याद जरूर करते हैं, रूह रूहान भी बहुत करते हैं, शक्ति लेने का भी अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाए। अब याद को पावरफुल बनाने का तरीका क्या है, बाबा ने कहा कि योग को तप के रूप में परिवर्तन करो, लेकिन याद को पावरफुल नहीं बनाया है। जो भी संकल्प करो विदाई और विदाई हो जाए। योग को अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। संस्कारों को भस्म करने का तरीका एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कारों को भस्म करने में आवश्यक है। जिस भी रूप में एकाग्र होना चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म। इतना पावरफुल संकल्प करो, बाबा कहते वो भस्म हो जाए। इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान भी समाप्त। मारने में तो लाश भी रहता है, कोई मर गया उसकी लाश तो पड़ी हुई है ना, मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना। भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहना चाहो, मास्टर सर्वशक्तिमान, ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकता है। तो बाबा क्या बता रहे, जिस स्वरूप में रहना चाहो, मास्टर सर्वशक्तिमान, ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति के आपके ऑर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, बाबा क्या बता रहे हैं, मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना। तो बाबा कहती हैं, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वो मास्टर है? अब हम सर्वशक्तिवान बुला रहा है, आओ आओ, आने वाला कहता मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर ना हो तो क्या मास्टर कहेंगे? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कारों का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है। क्या रिजल्ट? पुराने संस्कारों का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है और वह अंश बीच बीच में क्या करता है, वंश भी पैदा कर देता है। जो कर्म तक भी काम हो जाता है वो संस्कार ऐसा है, पैदा कर देता है वंश को, फिर आगे बढ़ता जाता है। जो कर्म तक भी पैदा कर देता है, युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं। समय ऐसा है बच्चे युद्ध करते रहे, तो बाबा कहते तो बाप दादा को समय प्रमाण बच्चों का युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो जी हजूर। तो सुना, इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हो? बाबा बताते हैं ना, बच्चे कहते हैं विश्व के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है ना। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हो? हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हो ना। प्रजा योगी है कोई? बाबा पूछते है कोई प्रजा योगी तो हाथ खड़ा करो। तो बाबा ने कहा राजयोगी कहलाते तो सबने हाथ खड़ा किया। प्रजा योगी है कोई? कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो? हो तो हाथ खड़ा कर दो। तो बाबा कहते हैं कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो? जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई है जो कहे नहीं हम तो प्रजा योगी हैं? आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है? चलो खुद नहीं आपके सेंटर पर आते भाई बहने। तो बाबा कहते हैं क्या आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी हैं, प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता है। बाबा ने कहा तो उठाओ प्रजा योगी, बल जाकर के बाद में बनेंगे, लेकिन अभी तो लक्ष्य क्या है, राजयोगी बनना है और राज्य अधिकारी बनना है। तो बाबा कहती हैं प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता है ना कि प्रजा योगी बने, अच्छा नहीं लगता है ना। और बाप को भी फकर है, कौन सा फकर है, बाप दादा फकुर से कहते हैं कि संगम, संगम पर हर एक बच्चा राजा बच्चा है। बाबा हर बच्चे को क्या देखते हैं और क्या कहते हैं, हर एक बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से कह नहीं सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। दुनिया में चले जाओ, कोई भी बाप ये नहीं कहेगा मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। वो तो अच्छे को कहेगा अच्छा, जो नहीं पढ़ता कहेगा तुम पढ़ता नहीं है, क्या बनेगा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी बाप ऐसे फलक से कह नहीं सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा, राजा भी नहीं स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ उठाया ही नहीं है, तो राजा होना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करे और आए नहीं। ये भी है बाबा कहते कई राजा ऐसे होते हैं वो अपने मस्ती में प्रजा को देखते नहीं है, तो बाबा कहते ऐसा राजा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करे वो आवे ही नहीं, कमजोर राजा भी नहीं बनना। दो बात, ढीला ढाला, दूसरा कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो, उस समय हॉल बहुत भरा हुआ था तो बाबा पीछे वालों को याद कर रहे हैं, जो समझते हैं राजयोगी है वहां हाथ उठाओ, पीछे वाले देखो लास्ट में कितने बैठे हैं ना, जो समझते राजयोगी हैं वह हाथ उठाओ, ऊपर भी बैठे हैं, जब बहुत संख्या हो जाती थी गैलरी में बैठते हैं, गैलरी में भी बैठे हुए हाथ हिला रहे। आज हॉल में 18,000 भाई बहने बैठे, हॉल में 18,000, गैलरी में अलग, बाहर अलग, और पांडवन अलग, ज्ञान सौ अलग, बाकी स्थानों पर अलग थे, तो काफी ज्यादा संख्या थी। आज हॉल में 18,000 भाई बहने बैठे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले, जो गैलरी वाले थे, जो ऊपर थे अन्य स्थानों पर, तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो अभी ये लास्ट टर्न तो शुरू हो जाएगा, तो 3 मास बाप दादा देते, लास्ट टर्न पूरा हो रहा है इस साल का, तो 3 मास, तो अभी ये लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा, तो 3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है देवे, होमवर्क देंगे, क्योंकि ये बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्म इंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, ऑर्डर करें वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। 3 मास के अंदर मास्टर सर्वशक्तिवान बनके किसी भी शक्ति को ऑर्डर करना है, उसने माना या नहीं माना। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्म इंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, तो वह जब ऑर्डर करें वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। कर सकते हो ना, पहली लाइन वाले कर सकते हैं, बाबा के सामने पहली लाइन में दादियां, वरिष्ठ भाई, मुख्य टीचर्स मैंने बैठी होती थी, तो बाबा कहते पहली लाइन वाले कर सकते हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा 3 मास को भी पुराना संस्कार वार नहीं करें, अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन भी नहीं लाना, एक अलबेले नहीं बनना। दूसरा बाबा कहते हैं रॉयल अलबेलापन भी नहीं लाना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते, बाबा कहेंगे ना, एक बाबा को कहते बाबा हो जाएगा, हम कर तो रहे ना, तो बाबा भी देखते हैं, मुस्कुराते हैं। तो बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो। अब बताओ बाबा को क्या फिक्र है, फिक्र बच्चों को करना है, पुरुषार्थ बच्चों को करना है, बाबा तो केवल गाइड करते हैं। फिर बाबा को बच्चे इतने होशियार है, कहते बाबा आप फिक्र नहीं करो, बाबा समझ आते करने वाला ही नहीं। जो ऐसा कहते हैं फिक्र नहीं करो, उसके अंदर गुंजाइश होती है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा, क्या कहेगा, सुनकर मुस्कुरा देते हैं। बाबा को कहते बाबा हो जाएगा, तो बाबा क्या करेगा, बाबा भी सुनते हैं, बाबा को पता है ढीले ढाले हैं, बाबा क्या करते, सुनकर मुस्कुरा देते हैं, सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं, मकर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, 3 मास में नहीं किया, मंजूर है तो हाथ उठाओ कि हम करेंगे, मंजूर है तो हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाना। कईयों ने हाथ उठाया और देखा देखी भी उठाया, बाबा ने कहा अगर मंजूर है तो उठाओ, तो कईयों ने उठाया, कईयों ने नहीं भी उठाया, तो जिन्होंने उठाया बाबा कहते हैं मंजूर है तो हाथ उठाओ, क्योंकि अलबेली बातें करते बाबा हो जाएगा, हम कर तो रहे हैं, क्या करें, ऐसा हुआ था, ये परेशानी आई थी, ऐसा हो गया तो इसलिए हुआ। तो बाबा कहते हैं मंजूर है तो हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाना, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना कि सबने उठाया मैंने नहीं उठाया तो सब कहेंगे इसने क्यों नहीं उठाया, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना, पक्का है ना, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है, पक्का है ना। फिर बाबा ने 3 बार बोला पक्का, पक्का है, पक्का है, पक्का है, बाबा पक्का कराया 3 बार, पक्का है, पक्का है, पक्का है, टीचर्स करना है ना। फिर टीचर्स हाथ उठवाया, अच्छा ये ताज वाले बच्चे क्या करेंगे, जब दिसंबर का मास आता है ना तो उस समय विदेश के छोटे बच्चे चिल्ड्रंस प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन प्रोग्राम, इंटरनेशनल यूथ प्रोग्राम होता है, तो विदेश के सभी देशों के जो छोटे बच्चे सेंटर पर आते हैं तो उनका प्रोग्राम होता है, क्योंकि क्रिसमस हॉलीडेज होते हैं और यूथ का प्रोग्राम होता है, तो बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज पहनाते हैं, तो उस दिन ताज पहनाया हुआ था, तो यूथ को भी कभी कभी ताज पहनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा ये ताज वाले बच्चे क्या करेंगे, छोटे बच्चे ताज पहन करके सामने बैठे, छोटे छोटे बच्चे थे, बाबा जब याद करते थे तो उनके लिए बोलते खड़े होकर के, वो बहुत सुंदर गीत गाते थे, बाबा से बहुत प्यार की बातें भी करते थे। ताज तो अच्छा पहन लिया है लेकिन करना पड़ेगा, बाबा ने उनको कहा देखो ताज तो पहन लिया है, देखो बच्चों को भी बाबा मजबूत कर रहे हैं, ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा। अच्छा देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर उनको सिखाएंगे करना है, ये वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, बाबा देखो कितना पक्का करे, नहीं करेंगे तो बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे। तो बाबा कहती हैं क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, कहते ना समय आएगा सब हो जाएगा, बाबा समय पर तुम कर ही लेते हैं ना, कई लोगों की कैसी आदत होती है, कोई भी काम होता ना पहले नहीं करते, टाइम होता है टाइम के टाइम पर फटाफट फास्ट कर लेते हैं, तो आदत पड़ी हुई है। तो बाबा को भी यही कहते बाबा हम समय पर तो कर ही लेंगे ना, तो बाबा कहते समय का इंतजार नहीं करना है, समय से पहले तैयारी करनी है। तो बाबा कहते हैं आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है, प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति भी आपका आह्वान कर रही है। तो तीन मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कारों को परिवर्तन करना। तीन मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज पर रह करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। अगर तीन मास अटेंशन रखा तो आगे भी उसका अभ्यास हो जाए। बाबा ने केवल थोड़ा टाइम दिया, अटेंशन रखने की आदत पड़ जाएगी तो फिर आगे भी करते रहेंगे। अगर तीन मास अटेंशन रखा तो आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई तो बहुत काम में आएगी। समय का आप इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा, अभी भी आपस में बात करते पता नहीं कब विनाश हो जाए, देख भी रहे फिर भी पूछते रहते कब विनाश होगा। बाबा से पूछते थे ना, बाबा कब विनाश होगा, बाबा कहते समय का इंतजार क्यों करते आप। तो बाबा कहते आप समय का इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा, सब रू रूहान में पूछते। अरे बाबा से वरदान लो, बहुत कुछ अनुभव करो, बाबा को पूछते बाबा बताओ विनाश कब होगा। बाबा कहते देख नहीं रहे हो क्या। तो रू रूहान में पूछते हैं, बाहर से बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर बात करते हैं, पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा, अच्छा 2 साल तो मैं कर लो ना जब तक होगा, 10 साल में होगा, क्या बहुत टाइम है अभी, 10 साल तो बहुत टाइम है, उसको पता ही नहीं कि पहले क्या हो गया है, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष तो बता दो। बाबा से क्या बात करते, बताओ बाबा 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, अच्छा तारीख ही बता दो, थोड़ा सा तो इशारा दे दो, थोड़ा सा तो बता दो। तो बाबा कहते हैं तो कितने साल में होगा। आप क्यों समय का इंतजार करो, समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप से पूछते हैं तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो, 10 वर्ष लगेंगे या 20 वर्ष लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे। अब बाबा से पूछे, बाबा तो बच्चों को इशारे देते ही रहते हैं, कई बच्चे ऐसे वंडरफुल हैं, वो अपनी मन मन से तारीख बनाते, इस साल में हो जाएगा, इस साल में ऐसा हो जाएगा। इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, इस साल में विनाश हो जाएगा, इस साल के बाद स्थापना हो जाएगी, स्थापना में यही होंगे, लक्ष्मी नारायण ये होगा, फर्स्ट सेकंड, पता नहीं अपने क्या क्या अनुमान से बनाते रहते हैं, लेकिन आप उसको सुनेंगे तो ज्ञान योग जो है वो सारा भूल जाता है, बाबा की याद भूल जाती है, पुरुषार्थ भूल जाता। बाबा ने बता दिया होना ही है ना, दिन आना ही, कभी भी आए तो होना ही है। कई लोग आपको बताएंगे कि इस साल के अंदर हो जाएगा, कई बार कई भविष्यवाणियां भी होती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सुनते हुए भी अपना क्या करना, पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं कितना वर्ष लगेंगे, बाबा से पूछते हैं। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, क्या आप सब बाप समान बन गए हो। बच्चे बाबा से पूछते विनाश कब होगा, बाबा पूछते पहले बताओ क्या आप सब बाप समान बन गए हो। पर्दा खोले कि खोले, तो कोई तो कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है, जब कोई होता है ना ड्रामा होता है, एक्ट्रेस हैं पीछे तैयार हो रहे होते हैं और ड्रामा शुरू करने का टाइम होता है, पर्दे के पीछे कोई कहेगा ठहरो ठहरो अभी 2 मिनट ठहरो मैं अभी तैयार नहीं हूँ, दूसरा कहेगा मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो बाबा वो सीन बता रहे, कोई फेस को ठीक कर रहा है, कोई कंघी कर रहा है, कोई अपना मुकुट लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अभी तैयार ही नहीं, समय आ गया। बाबा कहते विनाश हो जाए और बच्चे तैयार नहीं है तो क्या होगा, विश्व के सामने कैसे प्रत्यक्ष करेंगे। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि आप सब बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो, पर्दा खोले कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस पे क्रीम लगा रहा है, अगर एवर रेडी हो, कोई एक्टर तैयार हो रहा है ना और स्टेज पे आ जाए तो क्या लगे, उसको देखते सारे हंसना शुरू कर दें, ये कौन आ गया, अभी तक तैयार नहीं है, आधा ही डेकोरेट करके आ गया है। आप एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी, एवर रेडी तो हो जाओ, एवर रेडी बनो, पर्दा खुला ही पड़ा है, हो जाएंगे कह के बाप दादा को बहुत खुश कर देते। बाबा को कहते बाबा हम हो रहे हैं ना, हो जाएंगे, तो बाबा कहते ऐसा कह के बाप दादा को खुश किया है, अभी ऐसा नहीं करना, बाबा हम कर रहे हैं हो जाएंगे, बाबा कहते अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना ही है। इसमें सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की जरूरत नहीं, जैसे बाबा ने कहा बनना है तो सबने हाथ उठा दिया, बाबा कहते इसमें तो हाथ उठा दिया लेकिन करके दिखाओ ना, इसमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखा, साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप ने त्याग तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल करके दिखाया, अपनी ड्यूटी शिव बाबा ने देखो लास्ट में अंत तक सारी ड्यूटी किया। सुबह बाबा ने सारे मकानों का चक्कर लगाया, उस समय ट्रेनिंग सेक्शन बन रहा था, नीचे का पोर्शन बन चुका था और दूसरा ऊपर का बन रहा था, बाबा ने उसके लिए डायरेक्शन भी दिए थे। फिर बाबा ने सारा सभी डिपार्टमेंट का हिसाब लिया और जो सारे पत्र थे सभी पत्रों का जवाब भी दिया, और शाम के टाइम बाबा ने क्या किया पता है आप सबको, कि बाबा हमेशा पहले क्लास कराते थे, पीछे बच्चे भोजन करते थे, उस दिन बाबा ने सबको कहा बच्चे पहले भोजन कर लो, पीछे बाबा क्लास कराएंगे। क्लास भी कराया, शिक्षा भी दी, सब कुछ दिया। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण करने की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाए। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट तक दिन तक निभाई। लास्ट मुरली याद है ना, तीन शब्द का वरदान है, याद है ना, बाबा ने तीन वरदान दिए थे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। तीन शब्द का वरदान, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। जिसको याद है हाथ उठाओ, सबको याद है ना, किसको भूल सकता है। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, लास्ट दिन तक बाबा ने त्याग किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितने प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बाबा ने क्या कहा, ये बच्चों के लिए बनवाया। बाबा को हमेशा कहते थे, दादियां कहती थी बाबा ये दूसरे कमरे में जाओ, बाबा ने कहा नहीं, ये जो कुछ भी है बच्चों के लिए है। तो बाबा ने क्या किया, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं यूज नहीं किया, और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं के प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब तो कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने, जो सोचा वह करके दिखाया। बाबा ने जो संकल्प किया उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाया। हम सब क्या करते हैं, बहुत संकल्प करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ आगे के लिए छोड़ देते हैं, ना आगे होगा ना बात आएगी। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा सदा 2:30 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने, जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे? ईशी दादी बोलते रहे, बाबा बहुत पत्र हो गए आज, जो एक दो बाकी पत्र कल लिखेंगे। बाबा ने कहा नहीं, आज ही पूरे करने हैं। तो बाबा ने सारे लेटर, कोई भी एक भी लेटर नहीं छोड़ा पेंडिंग कि कल जवाब देंगे। सभी पत्रों का बाबा ने जवाब दिया। तो बाबा कहते लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर, अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड महादानी। बाबा कहते महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। लास्ट तक बाबा भी वही एकदम बिना आधार के, एकदम कमल पुष्प की तरह बाबा बैठते थे, एकदम सीधे। आजकल तो देखो हर एक के साथ कुछ ना कुछ होता ही है, नहीं बैठ सकते ना। तो बाबा ने कहा लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी तो बच्चे आधार लेते हैं ना बैठने का, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आंखों में चश्मा भी नहीं डाला, रोज का साकार चीजों का, स्थूल चीजों का भी बाबा ने आधार नहीं लिया। ये भी तो सूक्ष्म शक्ति है, निराधान। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको नहीं कहते, बाबा ये नहीं कहते क्यों चश्मा डाला है। वो तो बाबा तो उदाहरण दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को उदाहरण दे रहे हैं। अभी बाबा ने कहा ना कि प्रकृति हवा पानी सब दूषित है, तो बाबा इसलिए बच्चों को नहीं कह रहे हैं। लेकिन बाबा एक बता रहे हैं कि बाबा का तपस्वी रूप क्या था, कैसे पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहती हैं इसलिए बाप दादा आपको नहीं कहते हैं क्यों आधार लेते हो। कई बच्चे सुनते हैं ना मुरली, फिर सबको कहेंगे बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा ने नहीं कि आप क्यों करते हो। तो बाबा पक्का करे, ऐसा नहीं करना कि दूसरों को बोलो कि तुम क्यों आधार ले रहे हो। तो बाबा बता रहे हैं बाप दादा आपको नहीं कहते हैं क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। भले पहनो, जरूर पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारे विश्व का कार्य क्या समाप्त किया है? अभी तो ऐसी हालत हो गई, हर एक के शरीर तमो प्रधान है। डॉक्टर के लिए ये डालो, ये चश्मा डालो, ये दवा डालो, कई बातें ना। तो बाबा कहते भल करो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारे विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछते, कौन सा? सारे विश्व का कार्य समाप्त किया है। फिर दूसरा प्रश्न है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया? अब बाबा पूछ रहे हैं, हुआ ही नहीं तो क्या बताएंगे। तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है वह हाथ उठाओ। तो बाबा के सामने एक ने भी हाथ नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं है ना, वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं, तो कैसे कहते हो विनाश होगा, कार्य पूरा किया ही नहीं है। तो बाबा कहते हो विनाश विनाश की बात करते हो, तो कैसे कहते हो विनाश होगा, काम तो पूरा किया ही नहीं है, काम पूरा ही नहीं किया है। तो फिर बाबा कहते विनाश कैसे होगा? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रतन है, हर कलक में विजयी बने थे अब भी हैं और हर कलक में विजयी है ही। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा न कोई, न संसार का आकर्षण न संस्कार का आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाली सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप दादा के रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते, और हम रूहानी बच्चे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग करते हैं। अब इसके बाद है आज का वरदान। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भाव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भाव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मण के बनते। कौन बनेंगे विजय माला के मण के? बहुत समय के विजयी विजय माला के मण के बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वह हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तभी विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रलब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रलब्ध, सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य। स्लोगन, सेवा में सदा जी हजूर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अब एक इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता, क्या है कैसा है, ठीक को लग रहा हूँ या नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आए तो वह एक सेकंड में स्व स्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्मा है वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती है। आज 29 तारीख है, प्यारी मम्मा की विशेषता आज के दिन हम सुनेंगे। तो आज का है, आज का विशेष जो गुण है, अपने पन के गुण द्वारा संगठन की शक्ति का संचार। सबको अपना बनाकर संगठन बनाया, अपने पन के गुण द्वारा संगठन की शक्ति का संचार। मम्मा ने सबको अपने पन का स्नेह दिया, सबको साथ लेकर चलने की उनमें कुशल कला थी। सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते हैं वह उनके अंदर पूर्ण रूपेण थे। उनको देखते ही हर एक को स्वाभाविक रूप से माँ की भासना आती थी। उन्होंने हर एक की जरूरतों को बिना मांगे पूरा किया। ऐसी महान शक्ति माँ में थी, ऐसी महान शक्ति माँ में थी। हम सभी मम्मा की तरह सबको अपना माने। अपना मानना और अपनेपन का अनुभव कराना यही मातृत्व शक्ति है। अच्छा, ओम शांति शांति। अच्छा भट्टी के भाई बहने तो कल सभी जा चुके हैं। अच्छा, आज आप सबको क्लास की टोली गरम गरम भुट्टा मिल रहा है, जो कि शांति सम के पास हिस्ट्री हॉल के सामने। तो आज मल्ली की क्लास की टोली शांति सम के सामने गरम गरम भुट्टा मिल रहा है। अच्छा, भट्टी के सब भाई बहने चले गए? कोई है भट्टी का भाई या बहन? थोड़े से 20-25 है। तो आज जा रहे हैं कितने? आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं? आज जा रहे हैं। सब अच्छा बाबा ने अनुभव कराया ना। आज ये ग्रुप जाएगा, फिर 2 दिन में दूसरा ग्रुप आ जाएगा। बाबा के घर में बाबा के लाडले बच्चे आते रहते हैं और बाबा प्यार से भरपूर करते हैं। अच्छा, अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। आप देख रहे हैं अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हुई है, तो बारिश में सबको ध्यान रखना। एक तो दौड़ना नहीं है, दूसरा छतरी डाल के ही चलें, और कहीं फर्श कभी कभी गीला होता है तो फिसलने का डर होता है। चाहे कहीं भी जाए, किचन में भी जाते हैं ना, तो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा गीला होता है। जब भी किचन की तरफ जाते हैं, डाइनिंग हॉल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे योगी की तरह चलो, दौड़ो नहीं, आवाज भी नहीं करो और दौड़ो भी नहीं, आराम से बैठो, बाबा की याद में बैठ करके भोजन स्वीकार करें, लेकिन दौड़ना नहीं है। बरसात का टाइम है ना, इस बात का सबको ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।